ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಘನೆ ಜಂಗಲ್ ಮೇ ರಹತಾ ಥಾ. ಕಭಿ ಶಹರ್ ಯಾ ಶಹರಿಗೆ ಕೋಯಿ ಚೀಜ ವಸ್ತು ಕೋ ನಹೀ ದೇಖಾ ಥಾ. ಭೂಲಾ ಭಟ್ಕಾ ಏಕ ಶಹರ್ ಮೇ ಪಹುಂಚ ಗಯಾ. ಶಹರ್ ಮೇ ಭೀ ಕಹಾಂ ಪಹುಂಚಾ, ಏಕ ದರ್ಪಣ ಕಿ ದುಕಾನ್ ಕೆ ಸಾಮನೆ. ಉಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೇ ಜೀವನ್ ಮೇ ಕಭಿ ದರ್ಪಣ ನಹೀ ದೇಖಾ ಥಾ. ದರ್ಪಣ ಕಾಫಿ ಐಸಾ ಬಡಾ ಥಾ, ಸಾಮನೆ ಉಸೆ ಅಪ್ನಾ ಹೀ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಜರ್ ಆಯಾ. ತೋ ಉಸ್ನೇ ಐಸಾ ಕಿಯಾ ತೋ ಉಸ್ಕಿ ಹೀ ಅಪ್ನಿ ಪರಿಛಾಯಿ, ಅಪ್ನಾ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ವೋ ಭೀ ಐಸಾ ದಿಖಾ. ಉಸ್ನೇ ಸೋಚೋ ಕೋಯಿ ದೂಸರಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮನೆ ಖಡಾ ಹೈ, ಉಸ್ನೇ ಐಸಾ ಕಿಯಾ, ಸಾಮನೆ ಸೆ ಉಸ್ಕಾ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಸೆ ಐಸಾ ಕರ್ ರಹಾ ಥಾ. ಉಸ್ಕೋ ಬಡಾ ಅಚ್ಛಾ ಲಗಾ, ಬಡೀ ಅಚ್ಛಿ ಬಾತ್ ಹೈ. ವೋ ಜೋ ಕರ್ ರಹಾ ಹೈ ವಹೀ ಸಾಮನೆ ವಾಲಾ ಭೀ ಕರ್ ರಹಾ ಹೈ. ಅಬ್ ಜೀವನ್ ಮೇ ಕಭಿ ದರ್ಪಣ ತೋ ದೇಖಾ ನಹೀ ಥಾ, ಯೇ ನಹೀ ಪತಾ ಥಾ ಕಿ ಮೇರಾ ಹೀ ಅಪ್ನಾ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹೈ. ಉಸೆ ಬಡೀ ಅಚ್ಛಿ ಚೀಜ ಲಗೀ, ವಹಾ ಕೋಯಿ ನಹೀ ಥಾ. ಔರ್ ಉಸ್ ಬಡೀ ಸೇ ದರ್ಪಣ ಕೋ ಉಠಾ ಕೆ ವೋ ಅಪ್ನೆ ಜಂಗಲ್ ಮೇ ಪಹುಂಚ ಗಯಾ. ಜಂಗಲ್ ಪಹುಂಚಾ, ಅಪ್ನೆ ಝೋಪಡಿ ಕೆ ಬಾಹರ್ ಝಾಡ್ ಕೆ ನೀಚೆ ವೋ ಶೀಶಾ ರಖ ದಿಯಾ. ಔರ್ ಲಕಡಿ ಕಾಟನೆ ಜಂಗಲ್ ಚಲಾ ಗಯಾ. ಥೋಡಿ ದೇರ್ ಕೆ ಬಾದ್ ಉಸ್ಕಿ ಪತ್ನಿ ಕುಛ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆ ಕರ್ತೆ ಬಾಹರ್ ಆಯಿ. ಔರ್ ಜೈಸೆ ಹಿ ಉಸ್ನೆ ದರ್ಪಣ ಮೇ ಅಪ್ನಾ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೇಖಾ, ತೋ ಜೋರ್ ಜೋರ್ ಸೆ ರೋನೆ ಲಗೀ, ಜೋರ್ ಜೋರ್ ಸೆ ಚೀಖನೆ ಲಗೀ, ಅಪ್ನೆ ಸಾಸ್ ಕೋ ಬುಲಾನೆ ಲಗೀ, ಮಮ್ಮಿ ಜೀ ಜಲ್ದಿ ಬಾಹರ್ ಆಯಿ, ಮಾತಾ ಜೀ ಜಲ್ದಿ ಬಾಹರ್ ಆಯಿ, ಮೇರಿ ತೋ ಕಿಸ್ಮತ್ ಫೂಟ್ ಗಯಿ, ಮೇರಾ ಸೋ ನಸೀಬ್ ಫೂಟ್ ಗಯಾ, ಹಾಯ್ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಕರೂ, ಜೋರ್ ಜೋರ್ ಸೆ ಜೋರ್ ಜೋರ್ ಸೆ ರೋ ರಹಿ ಹೈ, ಮಾತಾ ಜೀ ಜಲ್ದಿ ಬಾಹರ್ ಆಯಿ, ಮಾತಾ ಜೀ ಜಲ್ದಿ ಬಾಹರ್ ಆಯಿ. ಅಂದರ್ ಸೆ ಸಾಸ್ ನೆ ಕಹಾ, ಕ್ಯಾ ಹುವಾ, ಕಹಾ ಬಾಹರ್ ತೋ ಆಓ. ಸಾಸ್ ನೆ ಕಹಾ, ಮುಜೆ ಅಂದರ್ ಬಹುತ್ ಕಾಮ ಹೈ, ಅಂದರ್ ಆಕರ್ ಬತಾಓ. ಅಂದರ್ ರೋತೆ ರೋತೆ ಗಯಿ, ಔರ್ ಸಾಸ್ ಕೋ ರೋತೆ ರೋತೆ ಕಹನೆ ಲಗಿ, ಮೇರಿ ತೋ ಕಿಸ್ಮತ್ ಫೂಟ್ ಗಯಿ, ಮೇರೆ ಭಾಗ್ಯ ಫೂಟ್ ಗಯೆ ಮಾತಾ ಜೀ. ಕ್ಯಾ ಹುವಾ? ಕಹಾ, ತುಮ್ಹಾರಾ ಬೇಟಾ ದೂಸರಿ ಪತ್ನಿ ಲೇ ಆಯಾ. ಕಹಾ ಹೈ? ಕಹಾ ಆಂಗನ್ ಮೇ ಹೈ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಪತಿ ನೆ ಕಭಿ ದರ್ಪಣ ನೀ ದೇಖಾ ಥಾ, ತೋ ಪತ್ನಿ ನೆ ಕಹಾ ಸೆ ದೇಖಾ ಹೋಗಾ. ಅಪ್ನೆ ಹೀ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕೋ ದೇಖ ಕೆ ಯೇ ಸೋಚಾ, ಕೋಯಿ ಔರ್ ಔರತ್ ಹೈ. ಅಭಿ ಸಾಸ್ ಕೋ ಬಡಾ ಗುಸ್ಸಾ ಆಯಾ ಕಿ ಮೇರಿ ಬೇಟಿ ಕಿ ಇತ್ನಿ ಜರೂರತ್ ಕಿ ಏಕ ಪತ್ನಿ ಹೋತೆ ಹುಯೆ ದೂಸರಿ ಪತ್ನಿ ಲೇ ಆಯಾ. ಕಹಾ ಅಭಿ ಜಾ ಕೆ ದೇಖತಿ ಹೂ ಕೌನ್ ಹೈ ಕಲ್ ಮುಹಿ. ಅಬ್ ಬೇಟಿ ನೇ ದರ್ಪಣ ನಹೀ ದೇಖಾ ಥಾ, ಬಹು ನೇ ದರ್ಪಣ ನಹೀ ದೇಖಾ ಥಾ, ತೋ ಮಾ ನೇ ಕಹಾ ಸೆ ದೇಖಾ ಹೋಗಾ. ಔರ್ ಮಾ ನೇ ಜಬ್ ಬಾಹರ್ ಜಾ ಕೆ ದರ್ಪಣ ಮೇ ಅಪ್ನಾ ಹೀ ಚೆಹರಾ ದೇಖಾ, ತೋ ಸಿರ್ ಪೆ ಹಾಥ ಮಾರ ಕೆ ರೋನೆ ಲಗಿ, ಹಾಯ್ ರಾಮ್ ಲಾತಾ ತೋ ಜವಾನ್ ಲಾತಾ, ಬುಡಿಯಾ ಕ್ಯೂ ಲೇ ಆಯಾ. ಯೇ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಆಪ್ಕೋ ಕ್ಯೂ ಬತಾಯಾ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಆಜ್ ಸುಬಹ ಆಪ್ನೆ ಸುನಾ ಹೋಗಾ, ಆಜ್ ಕಾ ಹಮಾರಾ ವಿಷಯ ಹೈ ಶೀಶ ಮಹಲ್. ಹಮಾರಾ ಮನ್ ಭೀ ಶೀಶ ಮಹಲ್ ಹೈ. ಏಕ ತೋ ಆಜ್ ಹಮ್ ಯೇ ಜಾನೆಂಗೆ ಕಿ ಶೀಶ ಮಹಲ್ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಔರ್ ದೂಸರಾ ಯೇ ಜಾನೆಂಗೆ ಕಿ ಕ್ಯಾ ಮನ್ ಕೆ ಶೀಶ ಮಹಲ್ ಮೇ ಹಮ್ ವೋ ಸಬ್ ಝಾಂಕ್ ರಹೇ ಹೈ. ಜೈಸೆ ಕಿ ಬೇಟಿ ನೇ ನಹೀ ದೇಖಾ ಥಾ ಕಭಿ ದರ್ಪಣ, ತೋ ಸೋಚಾ ಕಿ ಯೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಚ್ಛಾ ಹೈ, ಪತ್ನಿ ನೇ ನಹೀ ದೇಖಾ ಥಾ ತೋ ಉಸ್ನೇ ಸೋಚಾ ಕೋಯಿ ದೂಸರಿ ಪತ್ನಿ ಲೇ ಆಯಾ ಹೈ, ಮಾ ನೇ ನಹೀ ದೇಖಾ ಥಾ ತೋ ಸೋಚಾ ಕಿ ಲಾತಾ ತೋ ಜವಾನ್ ಲಾತಾ, ಲೇಕಿನ್ ಬುಡಿಯಾ ಕ್ಯೂ ಲೇ ಆಯಾ. ಲೇಕಿನ್ ಸತ್ಯ ಕ್ಯಾ ಥಾ? ಸತ್ಯ ಯೇ ಥಾ ಕಿ ವೋ ಭಾಯಿ ಕಾ ಅಪ್ನಾ ಹೀ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ, ಅಪ್ನಾ ಹೀ ಉಸ್ಕಿ ಛವಿ ಥಿ ಜೋ ವೋ ದೇಖ ರಹಾ ಥಾ. पत्नी ने जो देखा कोई और औरत को नहीं देखा, वो उसकी ही अपनी छवि थी, उसका ही प्रतिबिंब था। सास ने जिसको देखा वो सास का अपनी ही छवि, अपना ही प्रतिबिंब था, लेकिन तीनों ने कभी दर्पण नहीं देखा था। हम ब्राह्मण बच्चे अपने आप से पूछे, हम अपने मन रूपी दर्पण में अपने को देख रहे हैं? और जो मन रूपी दर्पण में अंदर झांक कर नहीं देखते, और कभी कभी कोई कोई संस्कार ऊपर आ जाते हैं तो डर लगने लगता है, ये कौन है? जैसे पत्नी को लगा कोई और औरत है, सास को लगा कोई बुढ़िया है, ऐसे ही हमारे संकल्प हमने कभी देखे नहीं, इसलिए वो हमारे संकल्प हमें डराने लगते हैं। ये तो मैं नहीं हूं, ये तो मैं नहीं हूं, लेकिन है हम ही। उसके लिए आज बाबा के महावाक्य सबने सुने होंगे। बाबा ने हम सबको सबसे बड़ा टाइटल कौन सा दिया? बेफिकर बादशाह। ये सभी बादशाहों की सभा है ना, सभी बादशाह बैठे ना। होवनहार देवी देवता, सत्युग के देवी देवता, सत्युग के महाराजा राजा। तो राजा महाराजा कहाँ रहते हैं? महल में। भविष्य में तो हम महल में रहेंगे, लेकिन उस भविष्य के महल में रहने के पहले अविशेष महल में अपने आप को देख लें कि जो जो टाइटल आज बाबा ने हमें दिए हैं, क्या वो सब गुण, वो सब बातें हमारे अंदर आ गई है? सबसे पहले दर्पण में देखे अंदर क्या क्या है, क्योंकि हम बाहर की चीजें तो देख लेते हैं। दर्पण में देखा चेहरे के आंख के नीचे काला लगा है, उसको तो पूछ लेते हैं, लेकिन अंदर कितने काले दाग है, अंदर कितनी खामियां हैं, वो कहाँ देखेंगे? और वो देखने की आवश्यकता है मन रूपी शीश महल में। मन रूपी शीश महल में जो हम देख सकते हैं, कोई और हमें नहीं दिखा सकता। शीशा साक्षी का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। बाबा कहते हैं ना, साक्षी दृष्टा बनो। शीशा क्या करता है? आप जो हैं, जैसे हैं, वैसे आपको दिखा देता है। आप शीशे के सामने से हट जाएं, कोई दूसरा व्यक्ति आए, वो जैसा है वो वैसा आपको चेहरा दिखा देता है। कोई सुंदर व्यक्ति आया तो वो उसकी सुंदरता नहीं चुराता, कोई कुरूप व्यक्ति आए तो उसकी वो कुरूपता भी नहीं चुराता। और उनके हटने के बाद शीशा जैसा था वैसे का वैसा ही रह जाता है। कहने का तात्पर्य ये, मैंने अपने मन को वो शीशा बनाया है, वो शीश महल बनाया है। शीश महल में कई शीशे लगे होते हैं, ऊपर से नीचे से इधर से उधर से अंदर अदर एंगल से देखे तो हमारे अलग अलग रूप नजर आते हैं। और जिस दिन हम ये पुरुषार्थ करेंगे कि अंदर के मन रूपी दर्पण, मन रूपी शीश महल में जाके कि मेरे कौन कौन से पोज कैसे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चेकिंग आज हम कर लें। शीश महल सबसे पहला हमारा मन है, शीश महल भगवान के महावाक के बाबा के महावाक, ये मधुबन शीश महल है। शीश महल हमारा सेवा केंद्र है, जहां हम ज्ञान सुनने जाते। शीश महल हमारा परिवार है, घर है। शीश महल ये दुनिया है। इन सारे ही शीश महल में, इन सारे ही दर्पण में आज हम देखेंगे कि क्या हम भविष्य के जो आज बाबा ने कहा मौज में रहने वाले, क्या सही में हम मौज में रह रहे हैं? आज किसी से भी पूछे कैसे हैं तो कहते एकदम फर्स्ट क्लास, मजे, एकदम मजे में। कोई मजे में नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे सूक्ष्म अविज्ञा कहें, कोई ना कोई अवधारणा कहें, वो हमें सजा का अनुभव या सजा का अनुभव नहीं भी करा रहे तो ये बाबा से योग नहीं लगना, ये भी एक प्रकार की बहुत बड़ी सजा है। भगवान जो महावाक्य सुना रहा है, सुन के आप बाहर निकलते हैं, कोई पूछता है मैं देर से आया, आप बताएंगे बाबा ने क्या कहा? आज बाबा की मुरली बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या थी? कुछ तो थी लेकिन मुझे याद नहीं। ये भगवान के महावाक्य की याद नहीं रखना भी एक सजा है। दुनिया कुछ कह देती आप बाहर निकलिए, दो शब्द कह दिए, आज कैसे कपड़े पहने, मधुबन में आके भी अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, बार बार साड़ी को देखेंगे या अपने कपड़े को देखेंगे, मेरे कपड़े अच्छे नहीं, क्या रूम में जाके जल्दी से दूसरे कपड़े चेंज कर लेंगे। एक व्यक्ति ने एक बात कही, वो बाहरी चीज को तुरंत चेंज कर लेते हैं, भगवान कितनी बातें कह रहे अंदर चेंज करने की, उनको चेंज किया है। आज आवश्यकता है, भगवान ने हमें एक शीश महल बना के हमारे मन को भेजा है, उस मन रूपी शीश महल में कुछ बातें हम चेक करें जिससे हम भविष्य के महलों में रह सके। सबसे पहले अपने आप के मन में ये देखें कि अगर अब जैसे कि आप सब समझ रहे हैं, आप सब ने काफी क्लासेस यहाँ पे आए हैं, सबसे सुनी हैं, हमारे बड़े भाई बहनों ने बहुत सारी क्लासेस कराई, ज्ञान से फुल हो गए हैं, और ये भी कहीं ना कहीं समझ गए हैं कि अब बाबा का पार्ट भी चेंज हो रहा है, और वो पार्ट चेंज होने के साथ साथ हमें कहीं ना कहीं ये भी प्रेरणा मिल रही है कि अब हमें अव्यक्त स्थिति में स्थित होना है। अव्यक्त स्थिति भी एक दर्पण है, उस अव्यक्त स्थिति के दर्पण में अपने आप को जानने के लिए, अपनी स्थिति को जानने के लिए जरूरी है हम कुछ बातों को चेक करें। हम बहुत आज ज्ञान में चल रहे हैं, कई बहने कई भाई ऐसे कह रहे, उनका भी दोष नहीं, मुझे मिलते हैं दीदी बहुत सारी क्लासेस मिली, अव्यक्त में अव्यक्त का मिलन, अव्यक्त में अव्यक्त का मिलन, ये अव्यक्त में अव्यक्त का मिलन क्या है? जब हम यही नहीं जान पा रहे तो वो अव्यक्त मिलन होगा कैसे? तो सबसे पहले तो ये जान ले कि जब तक ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते रहे, बाप दादा जो हम में से शायद ही कोई हो जिसने 69 के पहले ये ज्ञान में वो साकार बाबा की पालना ली हो, उसे साकार मिलन कहता जाता रहा। 69 के बाद गुलजार दादी में बाप दादा का जो अवतरण होता रहा उसे हम अव्यक्त मिलन कहते रहे, और अब जबकि बाबा का रथ ठीक नहीं है, और जो पहले की आपको मुरली सुनाई जाती है रिकॉर्डेड, और हम हॉल में बैठ के बाबा का आवाहन करते हैं, और कई आत्मा अनुभव करती है कि जैसे बाबा सामने हमसे बात कर रहे थे, अनुभव करा रहे थे, ये है अपने आप को वतन में महसूस करके, बाबा के सामने महसूस होके बाबा हमें ज्ञान सुना रहा। अव्यक्त ये व्यक्त भाव, ये देह के भाव से परे होके आत्मिक स्थिति में स्थित होके वो परमपिता परमात्मा के सामने, ज्योतिबिंदु परमात्मा के सामने स्थित होके सुनना कि भगवान हमसे बात कर रहे, ये है अव्यक्त मिलन। हम आज से नहीं 69 से अव्यक्त मिलन 354 दिन करते रहे हैं। आप अमृत वेला जो योग करते हैं वो क्या है? अव्यक्त से अव्यक्त मिलन। शरीर का पिता नहीं, आत्मा का पिता है, आत्मा परमात्मा के पास जाती है और बाबा से हम शक्ति भर के आते हैं, ये अव्यक्त मिलन है। यहाँ पर भी आप आए, अभी बाप दादा का रथ ठीक नहीं है, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, हम परम धाम में जाके महसूस करते हैं, बाबा को साथ ले आते और समझते डायमंड हॉल में बाबा है और बाबा के महावाक्य सुन रहे, और जैसी हमारी भावना होती वैसी हमारे को वो अनुभूति होती है। कहने का तात्पर्य ये कि सबसे पहले तो हम ये जान ले अव्यक्त स्थिति हमने बनाई है। अव्यक्त स्थिति का मतलब ही है व्यक्त भाव से परे रहना, देह और देह से संबंधित जितनी बातें हैं वो सभी हमारे इस अव्यक्त स्थिति के बीच में रोड़ा का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सूक्ष्म सूक्ष्म बातें आज हमें अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं होने दे रही, और अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं है तो अव्यक्त मिलन का अनुभव कई आत्माओं को हो रहा है, कई को नहीं हो रहा। तो बहुत जरूरी है अव्यक्त स्थिति के शीश महल में हम देखें, और जब देखेंगे तो पता चलेगा कि कौन कौन सी कमी है। जैसे दर्पण में दिख जाता है हमारी अव्यक्त स्थिति होगी, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी कोई कमी हमारी होती है तो जैसे दर्पण में दिख जाती है हमारे मन रूपी दर्पण में दिख जाएगी। सूक्ष्म होती है बातें। एक भाई मेरे पास आए, हम तो दीदी वीआईपी किचन में खाना खाते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है। हमको तो दीदी वो उधर कमरा में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगा ये मुझे क्यों बता रहे हैं? कहीं ना कहीं सूक्ष्म भाव था, मैं वीआईपी की श्रेणी में आ गया हूं। ये भी सूक्ष्म अहंकार है। मिला बहुत अच्छी बात है, आपकी किस्मत है, आपका सौभाग्य। नहीं भी मिला तो तीर्थों में यात्राओं में तो कितने धक्के खाते हैं, वहां कोई भगवान आता है क्या? यहाँ पे तो भगवान कितने वर्षों से आ रहा है। मिल गया अच्छा तो भी ठीक है, अच्छे रूम मिल गए, अच्छे आप यात्री में कर रहे हैं, लेकिन ये दूसरों को बताना, आपको पता मेरे रूम में एसी लग गया है, अरे ये तो कौन सी बड़ी बात हो गई, कौन से ये एक पर सुरखाप के लग गए। लेकिन कहीं ना कहीं हम दूसरे को थोड़ा छोटा दिखा के अपने महत्व को दिखाना चाहते हैं, ये भी एक सूक्ष्म अभिमान है। और ये सूक्ष्म अभिमान हमें अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं होने देता। एक बार नदी को बड़ा अहंकार हो गया, उसे ये अहंकार हो गया कि मेरे तेज प्रवाह से, प्रचंड प्रवाह से मैं बड़े बड़े घर, बड़े बड़े झाड़, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े पहाड़ बहा के ले जाती हूँ और समुद्र में सौंप पाती हूँ। और एक दिन नदी ने समुद्र से कहा, कहो कुछ और चाहिए? अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे कहना, कितने पहाड़, कितने मकान, कितने लोग, कितनी चीजें मैं तुम्हारे ऊपर अर्पण कर चुकी हूँ, और कोई इच्छा हो तो बताओ। समुद्र को समझ में आ गया, नदी को सूक्ष्म अहंकार आ गया कि मैं जो चाहूँ वो लाके दे सकती हूँ। समुद्र ने कहा, बहुत अच्छी बात है, बहुत कुछ तुमने लाके मेरे ऊपर अर्पण किया, हो सके तो कुछ घास उखाड़ के ले आना। बस नदी चली, अब जहां जहां घास थी वहां वहां जाती, और जैसे ही पानी का बहाव तेज जाता तो घास झुक जाती। बहुत कोशिश करती लेकिन घास तो जड़ से उखड़ती नहीं। और बहुत कोशिश करने के बाद नदी हार कर आ गई और समुद्र से कहा, मैं बड़े बड़े पहाड़ ला सकती हूँ, बड़े बड़े पेड़, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मकान, इंसान को ला सकती हूँ, लेकिन मैं घास को नहीं ला पाई। क्योंकि जैसे ही मेरा तेज प्रवाह जाता है, प्रचंड प्रवाह जाता था, तो वो घास झुक जाती थी। मैं इतनी कोशिश करती थी जड़ से उखाड़ने की, लेकिन वो नहीं निकलती थी, और मैं तुम्हारे लिए घास नहीं ले पाई। तब समुद्र ने कहा, नदी बहना, ये वो घास की विनम्रता है जिसे कोई उखाड़ नहीं सकता। जब जब तुम्हारा प्रवाह गया तब तक वो झुक गई। जब जब हमारे सामने कोई ऐसी बातें आए हम थोड़े विनम्र हो जाएं। विनम्रता ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी रॉयल्टी है। अगर भगवान के महावाक्य सुनकर, ज्ञान सुनकर विनम्रता नहीं आई, और विनम्रता को तेज नदी का प्रवाह यानी बड़ी से बड़ी समस्या भी विनम्र व्यक्ति को उखाड़ नहीं सकते। हमारे जीवन में प्रॉब्लम आएंगी, समस्याएं आएंगी, बातें आएंगी, लेकिन घास के जैसे हम झुक जाए तो तेज से तेज प्रवाह भी आएगा नदी का, लेकिन वो हमें उखाड़ के नहीं फेंकेगा। हम अपने आप से पूछे, मेरे जीवन में इतनी विनम्रता आ गई है? अगर विनम्रता आ गई है, ये आपकी पहली पहचान है कि शीश महल में रहने के लिए आपने कहीं अपनी बेस को, अपनी नींव को मजबूत कर ली है। दूसरा, कहीं ना कहीं सूक्ष्म, कई बार आत्माओं में ये सूक्ष्म से रूप से आता है, हम जितनी मदद, हम जितना सहयोग करते हैं इतना कोई नहीं कर सकता, या जितना धन मेरे पास है इससे मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, लेकिन फिर यही कहेंगे ये सब विनाशी चीजें हैं। इन विनाशी चीजों का अगर हमारे मन में कहीं अहंकार है उसको भी निकाल दें। ये चीजें कुछ समय के लिए, कुछ चीज वस्तु के लिए, कुछ साधनों के लिए जरूरी है, लेकिन साधना के लिए ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे बीच में विघ्न रूप में भी आते हैं। हम सोचते हैं धन है सब कुछ है, धन कुछ है सब कुछ नहीं है। एक बहुत ही घमंडी राजा और बहुत ही क्रूर, अपनी प्रजा को लूट पाट करके, बहुत टैक्स करके करोड़ों अरबों का माल, सोना चांदी हीरे मोती नायाब हीरे दुनिया के महंगे, बहुत सारा धन इकट्ठा किया और महल के बाहर एक जंगल, उसमें एक खजाना बनाया और उस खजाने में वो रख दिया। उस खजाने की सिर्फ दो चाबी थी, एक राजा के पास और एक वजीर के पास, और वो दो ही जानते थे कि अखूट खजाना कुबेर का उस जंगल के, उस खजाने के अंदर है। कभी राजा जाता था, कभी वजीर जाता था। राजा को बड़ा अभिमान था कि दुनिया में मेरे से ज्यादा धनवान कोई नहीं है। हमेशा कभी कभार चक्कर लगाता था। एक दिन राजा के मन में आया कि आज चल के देखूं। गया, बड़ा खुश हो गया, देख ही रहा है हीरे मोती सोने चांदी पूरा चारों ओर वो हीरों की चमक से, और बड़े खुश होके लौट रहा है। आ नायाब हीरे, तूने मेरा जीवन हीरे बना दिया, ए सोने चांदी तुमने तो मेरे को दुनिया का ये बना दिया। ऐसे बड़ा खुश होके नाच रहा है, सारी दौलत को देख रहा है। उसी समय बाय चांस वजीर वहां से जा रहा था, उसने देखा कि दरवाजा खुला है, मैं कल रात को आया था, कहीं ऐसा तो नहीं मैं दरवाजा बंद करना भूल गया। राजा को पता चलेगा तो बहुत कड़ी सजा मिलेगी, और उसने जल्दी से वो दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और चला गया। अंदर राजा तो बड़े अभिमान में, बड़े गर्व में, वो हीरे वो मोती वो सोने वो चांदी के खदान को, वो सारी चीजों को देख के खुश हो रहा है, खुश हो रहा है। अब थोड़ी देर में उसने कहा अब चलता हूं, और जैसे ही दरवाजे के पास आया तो क्या देखा, दरवाजा तो बाहर से बंद था। दरवाजा बहुत जोर जोर से ठोक रहा है, आवाज कर रहा है दरवाजा खोलो, लेकिन जंगल में तो कौन होगा, किसी को तो पता नहीं था। महल के इतने दूर जंगल में कोई खजाना भी है, वहां तो कोई नहीं था। बहुत पीटता रहा, बहुत पीटता रहा, कई घंटे बीत गए, गला प्यास से सूख रहा था, और उन हीरों के पास जाके हीरों को उठा के कहता है, हे नायाब दुनिया के सबसे कीमती हीरे, मुझे एक गिलास पानी पिला दो। हीरे कहां से पानी पिलाते, उस सोने चांदी के हर चीजों पे जहां मनों से सोना रखा था वहां जाके सबको छूरा है। मेरे को बहुत जोर की भूख लगी, मुझे एक टाइम का भोजन दिला दो। रोता रहा, चीखता रहा, हर चीज को छूता रहा, मोतियों को बिखेर दिया, उसके ऊपर सो गया और बेहोश भी हो गया, क्योंकि ना पानी था ना भोजन था। और कुछ समय के बाद तंद्रा टूटी, ऑलमोस्ट उसके प्राण पखेरु निकलने वाले थे। वो कुछ लिखना चाहता था लेकिन वहां पर ना पेन था ना पेपर था, लेकिन कुछ तो लिखना है, ये तो समझ में आ गया। दरवाजा नहीं खुलेगा, पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे कुछ शिक्षा देनी है। और उसी समय उसने अपने अंगूठे को पत्थर के ऊपर मार के पत्थर से घाव किया और अंगूठे से कुछ दीवार के ऊपर लिख दिया और थोड़ी देर के बाद उस राजा की मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु हो गई, वहां पड़ा रहा। दो दिन चार दिन हो गए, महल में हाहाकार मच गया। राजा कहीं दिख नहीं रहे, राजा कहीं गायब है। सारा राज्य ढूंढ डाला, सब जगह ढूंढ डाले, और 8-10 दिन हो गए, 15 दिन। वजीर को शक हुआ, जाके एक बार मैं उस खजाने में देख लूं। और जब वो वजीर खजाना खोलकर अंदर गया तो क्या देखा, राजा की डेड बॉडी पड़ी है, कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, सड़ गई है उसकी बॉडी। और दीवार के ऊपर लिखा था, ये सारे हीरे मोती सोना चांदी सारी दुनिया की दौलत एक ग्लास पानी और एक कौर खाना भी नहीं दे सकती, इसकी इतनी भी कीमत नहीं है। कहने का तात्पर्य, कई बार हमें सूक्ष्म ये होता है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, कुछ नहीं। आज जो बाबा ने कहा, सबसे बड़ा अगर हमारे पास कोई खजाना है तो वो हमारे कर्मों का है। हम अगर शीश महल, मन रूपी महल में देखें, मन रूपी दर्पण में देखें, तो हमें ये सूक्ष्म कमियां नजर आएंगी। हम देखें कि मेरे पुरुषार्थ में जो बाबा कहता है, मौजों का युग है, संगम युग भी शीश महल है। ये शीश महल से ही हम गर्भ महल और गर्भ महल से ही राजमहल में जाने वाले हैं। लेकिन पहले वो प्रोसेस को तो देखें कि भविष्य में तो हम वो बादशाह बनेंगे, लेकिन वो बादशाह, वो रॉयल्टी अभी मेरे जीवन में आई है। और वो रॉयल्टी आने के लिए अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण में झांकते जाए, विनम्रता है, सहनशीलता है, समर्पणमयता है। हम बड़ी बड़ी बातें तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी प्रैक्टिकल जीवन में, जिससे हम वो दर्पण को, सिर्फ हम ही नहीं, हमारे दर्पण से तो, हमारे मन से तो हमको जवाब मिलेगा, लेकिन हमारा घर भी एक शीश महल है। आपके घर के लोग कहते हैं आपको, आप जहां जाते हो बहुत अच्छी जगह जाते हो, हमें भी लेके चलो कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो परिवार वाले जब देखते हैं कि आप जहां कहीं जा रहे, वहां से आपके जीवन में बहुत श्रेष्ठ परिवर्तन आया, आपके कर्म में, आपके बोल में, आपके संस्कार में परिवर्तन आया, उन्हें लगता है ये बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं, इतना अच्छा ज्ञान दे रहे कि इनकी जो पहले संस्कार थे वो चेंज हो गए। क्या वो कहते हैं हमें वहां लेके चलो, वो भी शीश महल है। अगर आप यहाँ से भगवान के महावाक्य सुनकर जाते हैं, मुरली सुनकर जाते हैं सेंटर से, और घर पे जाकर आप अपशब्द कहते हैं, झगड़ा करते हैं, या जो भी, बाबा ने कहा कि आत्मिक स्वरूप में नहीं देख के देह भान में आके मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, और वो अधिकार जो माँ के उनके ऊपर उस तरह से बिहेव करते तो वो क्या कहेंगे? आपका भगवान यही सिखाता है? क्या किया आपने? बाबा का नाम खराब हुआ? तो शीश महल में सिर्फ अपने मन के नहीं, हमें हर जगह से, हर एंगल से जवाब मिलना चाहिए, यस यू आर परफेक्ट, आप लग रहे हो आप भविष्य के बादशाह बन सकते हो। सिर्फ मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ, नहीं, मैं तो खुश हूँ। आप खुश हो अपने आप से? दूसरे आपसे खुश हैं? आपके परिवार वाले आपसे खुश हैं? आप जिस सेवा केंद्र पर जाते, वहां के जिज्ञासु, वहां की बहनें, वहां के भाई आपसे खुश हैं? वो सर्टिफिकेट देते हैं आपको कि पहले जब आप आए थे ना, हमने देखा था, अभी आप में बहुत परिवर्तन आया, क्या ये सर्टिफिकेट हमें मिलता है? ये हमारा सेवा केंद्र भी शीश महल है, मधुबन तो है, यहां पर लोग आते हैं, कई आत्माओं को हमने देखा, हमसे पूछते हैं, हमने ना दीदी ये बात सुनी थी कैसे? मैंने कहा भैया मैं तो ये सब बातों में नहीं रहती, आप तो मीडिया में, मैं मीडिया में हूँ, लेकिन मीडिया का काम ये थोड़ी है कि घर में क्या हो रहा है, घर में बहुत अच्छी बातें भी हो रही, वो भी तो देख लो। यहाँ पे भी आते हैं तो हम ये ढूंढना चाहते हैं, ये शीश महल में, कि यहाँ पे भी कोई कमी है, हमने ऐसा सुना था, हमने ऐसा पढ़ा था, हमने ये देखा था, सिर्फ यही देखने के लिए हमारे को बाबा ने रखा है। यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी लोग हैं, कितनी अच्छे अच्छे पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनके जीवन से देख के देखे क्या इनके जैसी स्थिति हमारी बनी है, क्या इनके जैसे बोल, इनके जैसे नेचर, इनके जैसी स्थिति देखते हैं तो जैसे इनके नजरों से भगवान नजर आ रहा, ऐसा लोगों को नजर आता है। क्योंकि कई आत्माओं में ये सूक्ष्म कमी है, यही हमें वो अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं होने दे रही, और वो स्थित नहीं होगी, अभी नहीं होंगे तो कब होंगे। समाप्ति बाबा ने कह दी, समाप्ति क्या करनी है, कई बच्चे यही समझते समाप्ति यानी संसार समाप्त होने वाला, संसार समाप्त होने वाला, वो तो जब होगा तब होगा, समाप्ति क्या करनी है। हमारे अंदर जो कमी कमजोरी रह गई है, जो दाग रह गए छोटे छोटे, उनको मिटाना है, उसकी समाप्ति करनी है। कहीं किसी से सेवा के दौरान, किसी कार्य के दौरान मन मुटाव हो गया है, कोई ऐसी बात हो गई, उसे खत्म करना है, उसकी समाप्ति करनी है। बाबा वो समाप्ति नहीं कहता कि अब बाबा नहीं आएगा या विनाश हो जाएगा। ज्यादातर बच्चे ये कहते बाबा ने तो कह दिया ना समाप्ति, अब समझ गए। चलो ये भी आपने समझ लिया तो समाप्ति समझ ली, तो समाप्ति के समय इसके बाद क्या होगा, सतयुग में आना है। सतयुग में आने के लिए जो महाराजा महारानी बादशाह बनना है, वो बादशाह वाले वो रॉयल्टी वाले गुण धारण कर ली। अगर चलो समाप्ति ही समझ रहे हैं आप, तो इसके बाद तो हम परमधाम जाएंगे। परमधाम में तो शरीर नहीं है, वहां पे तो पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, वहां से डायरेक्ट हमें सतयुग में आना है। और सतयुग में जो राजमहल में आएंगे, जो बादशाह महाराजा महारानी होंगे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, 100% पवित्रता, वो भी अपने आप में चेक करें, वो आ गई तो समाप्ति आ गई। समाप्ति ये नहीं कि विनाश होने वाला है तो समाप्ति, हमारी समाप्ति का मतलब है हमारे अंदर के सारे अवगुण दुर्गुण कमी कमजोरी समाप्त हो गई। और वो तभी समाप्त होगी जब कहीं ना कहीं अब इस टूटती हुई, इस समाप्त होती हुई दुनिया से वैराग्य होगा। बिना वैराग्य के, बिना तप के हम वो स्थिति, अव्यक्त स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते। मीराबाई कृष्ण की याद में कुछ पद गा रही थी, एक संगीतज्ञ वहां से जा रहे थे, उन्होंने कहा मीरा तुम राग में नहीं गा रही हो। मीरा ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मैं राग में नहीं, मैं अनुराग में गा रही हूं। अगर मैं राग में गाऊंगी तो दुनिया मोहित होगी, अनुराग में गाऊंगी तो मेरा कान्हा सुनेगा। मैं अनुराग में गा रही हूं अपने कान्हा को रिझाने के लिए, दुनिया को रिझाने के लिए नहीं। कहने का तात्पर्य है हमारी आत्मा वो अनुराग, वो परमात्मा से प्रेम की कड़ी जुड़ी है कि अभी दूसरों को ही प्रभावित करने के चक्कर में लगे हैं। अगर अब भी है कि लोग मुझे समझे मैं कुछ हूं, ये भी सूक्ष्म कहीं ना कहीं राग है, ये भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म अपने आप का अभिमान है। हम देखें आज हम सब छोड़ देते हैं, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, मुरली सुनते हैं, अमृत वेला करते हैं, नुमा शाम का योग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इच्छाएं कामनाएं तो मन में बनी रहती है। बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ सेवा केंद्र पे, तन मन धन से सब से आपने बहुत सहयोग किया, और फिर कोई महारथी आए, कोई दादी आए, दीदियां सबसे मिला रही है, दादी ये बहुत निमित्त आत्मा है, इन्होंने बहुत तन से मन से धन से सेवा की, और मैंने भी की थी लेकिन मेरा नाम नहीं लिया। बस उस दिन से दीदी से नाराज, हमने नहीं की थी क्या, हमारा नाम इनको याद नहीं रहा, जब सेवा की जरूरत पड़ती तो हमारा नाम आगे आता है, और जब बड़े आए तब उनको मिलाने के लिए हमारा नाम भूल गए, तो क्या हुआ। उसके बाद दूसरे दिन से योग लगेगा, योग लगेगा, जब भी योग में बैठेंगे तो क्या आएगा, दीदी मेरा नाम बताना भूल गई, मेरे को मिलाना भूल गई, दादी से मेरे को एक टोली दिला तो सकती थी ना, मैंने भी तो किया था और ने किया तो क्या है, ये सूक्ष्म क्या है, मैंने किया
उसका रिटर्न तो मिलना चाहिए था ना। दादी ने नहीं देखा और किसी ने नहीं देखा, भगवान ने तो देख लिया। भगवान के रजिस्टर में तो आपका नाम नेम हो गया। दुनिया क्या कब चढ़ा देगी कब उतार देगी कुछ नहीं पता। वो चढ़ाएगा तो कभी नहीं उतारेगा। ये भी चेक कर लीजिए अपने मन रूपी शीश महल में, कहीं ये नाम मान शान की सूक्ष्म अभिलाषा अभी भी है क्या। और अगर ये जब तक पूरे नहीं होंगे, आपका योग नहीं लगेगा, आपका योग नहीं लगेगा, आपकी अव्यक्त स्थिति नहीं बनेगी। अबे मुझे किसी से नाम मान शान नहीं चाहिए, कोई देता है शुक्रिया धन्यवाद, मन से बाबा को कहो बाबा ये आपको मिल रहा है मुझे नहीं, ये जो कुछ आपने करवाया है आपकी वजह से, तेरा तुझको अर्पण, मेरा कुछ नहीं है। किसी ने बुराई भी कर दी, बाबा तूने ही तो करवाया, तेरा तुझको अर्पण। ये नहीं कि अच्छे ही, किसी ने कहा आज आपने अच्छा नहीं बोला, ठीक है बाबा तेरा अर्पण, नहीं बुलवाया मैं क्या करूं, मैंने तो तेरे को सब सौंपा है। जिस दिन ये भावना आ जाएगी, जैसे मीरा ने कहा कि मैं दूसरों को सुनाने के लिए, दूसरों को प्रोवाइज करने के लिए नहीं गा रही हूँ, मैं तो अपने कान्हा को, मैं जो कुछ कर रही हूँ मैं अपने परमात्मा को, अपने बाबा को खुश करने के लिए कर रही हूँ, मैं दुनिया को खुश करने के लिए नहीं कर रही हूँ। और जिस दिन ये भावना आ जाएगी तो कोई मान दे चान दे, बुलाए आगे ना बुलाए फर्क नहीं पड़ता, अपने शीश महल में, मन रूपी शीश महल में, मन रूपी दर्पण में देखे क्या ऐसी स्थिति हुई है। कहते हैं कि एक बार एक ब्राह्मण तपस्या करने बैठ गया, बहुत गहन तपस्या, और जब उसके 6 महीने तपस्या के पूरे हो गए तो इंद्र महाराज का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र महाराज ने कहा मेरे यहाँ पे और भूकंप, मेरा सिंहासन डोल रहा है, देवी देवताओं को नीचे भेजा जाकर देखो कि मेरे सिंहासन हिला डुला क्यों। देवी देवता नीचे आए और पता किया कि एक योगी आत्मा कई समय से गहन योग में परमात्मा की याद में बैठी है, और अगर ये 1 महीना और योग कर लेगी, इसी स्थिति में रहेगी, तो वो इंद्र का जो सिंहासन वो इसको मिलेगा, यानी इंद्र को सिंहासन से उतरना पड़ेगा और उसका पुण्य इंद्र के सिंहासन से ज्यादा हो जाएगा। और देवताओं ने जाके राजा इंद्र को बताया, महाराज एक बहुत पवित्र ब्राह्मण कई समय से उस परमात्मा के योग में है, और अगर उसने 1 महीना और योग कर लिया तो आपका सिंहासन उसे मिल जाएगा, इसके लिए आपका सिंहासन डोला, ये एक सिग्नल है आपके लिए। अभी लोगों को तो कुर्सी से ही बड़ा मोह होता है, ये कुर्सी मेरी इस पे कोई नहीं बैठना चाहिए, तो सिंहासन का मोह तो और कितनी बड़ी बात है। इंद्र महाराज ने कहा नहीं, ऐसे तो अपना सिंहासन नहीं दे सकता, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और इंद्र महाराज ने एक युक्ति रची, एक साधारण ब्राह्मण का रूप लेकर उस जंगल में पहुंचे जहां पर वो ब्राह्मण तपस्या कर रहा था, और उसके सामने जाके कहा हे ऋषिवर मैं आपको प्रणाम करता हूं। वो तो गहन तपस्या में थे, दूसरी बार कहा हे ऋषिवर मैं आपको प्रणाम करता हूं। धीरे से उन्होंने आंख खोली, कहा ऋषिवर आपको प्रणाम करता हूं। इशारे से उन्होंने पूछा, कहा मैं एक ब्राह्मण हूं, रास्ता भूल गया हूं, लेकिन मेरे मालिक की ये सोने की तलवार मेरे पास है, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, और इस जंगल में पानी कहाँ है ये मुझे पता नहीं, और हर जगह ये सोने की तलवार लेकर जाना रिस्की है, कोई चोर डाकू मिले मेरे से छुड़ा ले तो अमानत में खयानत हो जाएगी, तो हे ऋषिवर आपसे इतना नम्र अनुरोध है, कुछ देर में मैं पानी पीकर आता हूँ, आप मेरे ये तलवार की रक्षा तब तक करें, पानी पीकर आऊंगा और मैं तलवार लेकर चले जाऊंगा। अब साधु जो इतना योगी तू आत्मा, उनमें तो दया करुणा प्रेम होती है,
का ठीक है। और इंद्र महाराज ने वो सोने की तलवार रख दी और पानी पीने चले गए। और वो योगी तलवार की तरफ देखते बैठा है। इंद्र महाराज कह गए थे पांच मिनट, दस मिनट, पंद्रह मिनट, एक घंटा, दो घंटा, चार घंटा, चार दिन, आठ दिन, पंद्रह दिन हो गए, एक महीना हो गए। इंद्र लौट कर ले आए और यहाँ क्या हुआ, ऋषि की जो योग था वो टूट गया। योग कहाँ लगा रहा, सोने की तलवार में। हमारे अंदर भी एक एक इंद्र बैठा है और हमारे अंदर के इंद्र ने भी हमारे सामने नाम मान शान रूपी सोने की तलवार रखी है। हमेशा ध्यान उस पे रहता है ये नाम मान शान मिले, और जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक योग नहीं लगेगा। अपने अंदर के इंद्र को भी पहचान लीजिए। ये हमें वो अव्यक्त स्थिति का अनुभव नहीं होने देता। जो इस वक्त नहीं किया तो पूरे कल्प में नहीं कर पाएंगे। हम अपने आप से पूछे, मेरी बार बार मन कहाँ जाता है, बार बार क्या करने को, क्या खाने को, किससे बात करने को जाता है। समझ लीजिए उसी व्यक्ति से, उसी चीज से वही आपकी बीमारी का जड़ है। कोई देहधारी बार बार याद आ रहा है, नाम मान शान याद आ रही है, कोई खाने पीने की चीज याद आ रही है, कोई पहनने ओढ़ने की चीज याद आ रही है, या तो कोई सुख दे रहा है तो याद आ रहा है, या तो कोई दुख दे रहा है तो याद आ रहा है। दो ही व्यक्ति याद आते हैं, या तो कोई सुख दे तो या कोई दुख दे तो, ये दोनों से ही हमारे कोई ना कोई हिसाब किताब है। तो कहीं ना कहीं हम चेक करते चले कि अगर मुझे भविष्य राजमहल में रहना है तो अभी इस जीवन के ब्राह्मण जीवन में जो ये मेरा अमूल्य जीवन है, इस जीवन में एक एक कोने में अंदर में मैं देख लूं मेरे में वो विनम्रता है, मेरे में वो सहनशीलता है, मेरे में वो निर्माणता है, मेरे में कहीं वो दिखावे के संस्कार तो नहीं है, मेरे में पुरुषार्थ का अभिमान तो नहीं। कई लोगों को और किसी चीज का नहीं होता है, लेकिन होता पता है, मैं आठ घंटे योग करता हूँ। आठ घंटे योग करते हो तो बहुत अच्छी बात है ना, बताने की क्या जरूरत है। और जो आठ घंटे करेगा ना उसको बताने की जरूरत नहीं है, उसके देखने से, उसके चलने से, उसके बैठने से, उसकी दृष्टि से, उसके आसपास बैठेंगे, उसके ऑरे से, उसके वाइब्रेशन से पता चलेगा योगी तो आत्मा है। जहां आग होती है वहां आसपास गर्मी अपने आप लगती ना, ताप लगता है ना। योगी आत्मा जो भगवान से आठ घंटा योग करे उसकी वो पवित्र वाइब्रेशन आ रही, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अपने आप आत्माओं को अपने आप वो ताप, वो पवित्रता की वाइब्रेशन का महसूस होगा। हम चेक करें कहीं ये भी तो मेरे में अभिमान नहीं है, और किसका नहीं होता है, लेकिन इस चीज का होता कि मेरे जैसे पुरुषार्थ कोई नहीं। हमारे पूरे सेंटर में कोई इतना योग नहीं कहता। मैं तो हर वक्त सबको, हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखता हूँ। देखते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन बोलने की क्या जरूरत है। अगर आप आत्मिक दृष्टि में हैं, जिसे बाबा सोमान भी कहते हैं, तो जहाँ सोमान है तो सोमान तो आपके अभिमान को खत्म करेगा, सामने वाले को अभिमान को भी समाप्त करेगा। लेकिन जहाँ आप ये बोल रहे हैं कि मैं हर वक्त आत्मिक स्थिति में रहता हूँ, रहती हूँ, हर वक्त मैं योगयुक्त रहती हूँ, ये बोलने की हमें आवश्यकता नहीं। काम आप करें, कार्य आप करें, स्थिति आप बनाए, सर्टिफिकेट आपको लोग दूसरे दें। हम आज अपने ही मुंह से मियां मिट्ठू बनते हैं, ये भी सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं देह अभिमान है। और जहां ये देह अभिमान है हमारी अव्यक्त स्थिति नहीं बन सकती। हम फिर चेक करें, एक सुनार की दुकान, लोहार की दुकान, उसके पास इतना बड़ा हथौड़ा रखा रहता था, देखता था हथौड़ा, सैकड़ों चाबियां लोहार ने बनाए रखी है, इतनी सी चाबी ताले में जाती है और ताला खोल देती है। हमेशा देखता था हथौड़े को, थोड़ा अपने ऊपर अभिमान था। एक दिन चाबी से पूछ बैठा, तेरे से आकार में भी बड़ा हूं, तेरे से ज्यादा वजनदार भी हूं, तेरे से ज्यादा शक्तिशाली भी हूं, लेकिन मैं ताला नहीं खोल पाता। अब खुलता भी है बहुत देर के बाद, हथौड़े से आप ताला तोड़े तो एक बार झटके से मारे तो नहीं टूटता है, समय लगता है। और तू एक मिनट में जाती है इतनी छोटी सी चाबी और ताले को खोल देती। आखिर तेरे में मेरे में फर्क क्या है? तेरे से ज्यादा शक्तिशाली हूं मैं, तेरे से ज्यादा मेरे पास सामर्थ्य है। चाबी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, भाई मेरे, मैं ताले के अंदर जाती हूँ, उसके अंतर मन को छूती हूँ, उससे विनम्रता से बोलती हूँ खुल जाओ, उसके अंतर मन को छू के अंदर घूमती हूँ और वो खुल जाता है। अगर भगवान को पाना है विनम्रता चाहिए, तुम क्या करते हो? तुम ताला खोलते नहीं, तुम ताला तोड़ते हो। तुम्हारा प्रहार पड़ता है, वो भी एक बार में नहीं टूटता, ताला टूट जाता है, दोबारा वो उपयोग में नहीं आता। और मैं जाके अंतर मन को छूकर विनम्रता से कहती हूँ कि खुल जाओ, उसके अंतर मन को छूती हूँ तो वो खुल जाता है। तुम बाहर से प्रहार करते हो, मैं अंदर मन को छूती हूँ तो वो खुल जाता है। हमारे अंतर मन को भी, वो परमात्मा के अंतर मन को छूने को भी, वो परमात्मा की शक्ति प्राप्त करने को भी हथौड़ा नहीं बनना, छोटी सी चाबी बनना है। यानी जब तक हम उस ईश्वर के करीब नहीं जाएंगे, अपने आप को समर्पण नहीं करेंगे, उस परमात्मा की शक्तियों को ग्रहण नहीं करेंगे, हमारी आत्मा का वो दरवाजा कैसे खुलेगा जहां हम परमात्मा से मिलन बना सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि हथौड़ा भले ही वजनदार है, हथौड़ा भले ही शक्तिशाली है, लेकिन हर काम शक्ति से नहीं होता। जहां विनम्रता है, जहां समर्पणता है, वहां पर भगवान ऐसे बच्चों को जरूर उस लायक बना देगा जो आज कहा कि संगम युग मौजों का युग है। तो हम यही कहेंगे कि एक एक चीज में आप चल रहे हैं, आप किसी के भी साथ बात कर रहे हैं, हर वक्त ये सोचिए हम शीश महल में चल रहे हैं। आप कोई ने देखा होगा शीश महल में कई मिरर लगे होते हैं, कई आईने लगे होते हैं, हर जगह से, ऊपर से, नीचे से, साइड से, हर जगह से आपका पोज दिखता है। कहीं से आप दुबले दिख रहे हैं, कहीं से आप मोटे दिख रहे हैं, कहीं से आपकी छोटी दिख रही है, कहीं से आपसे। हम शीश महल में हैं दुनिया के, हमारी हर एक छोटी छोटी बातें दिख रही है, हमें नहीं दिख रही लेकिन लोगों को दिख रही है। और अगर लोगों को दिख रही है और लोगों ने सर्टिफिकेट दिया, ये तो लगते हैं कि बने बनाए देवी देवता है, तो समझ लीजिए भविष्य महल में रहने के हम लायक बन गए हैं। लेकिन जब तक इस अंदर के शीश महल में नहीं झांका, तब तक कोई यूज नहीं है। तो आवश्यकता है हम इन छोटी छोटी बातों को यहाँ से जाने के पहले बाबा को अर्पण करते चले। और अब हम हर रोज जो अमृत वेला नुमा शाम योग करते हैं, वो योग को ही अव्यक्त स्थिति कहते हैं। देह से परे वाली और परम धाम में परमात्मा से योग लगाना अव्यक्त से अव्यक्त का मिलन है। ये अव्यक्त से अव्यक्त का मिलन तभी होगा जब हमने इन छोटी छोटी बातों को, जो छोटे छोटे दाग है, इनको शीश महल में देख के मिटा दिया होगा। अब भी हमारे पास समय है, बाबा कह रहा है अब भी समय है, अब भी हम चेक कर ले, चेंज कर ले। और अब पुरुषार्थ का समय कहीं ना कहीं समाप्त होने को भी आया, लेकिन समय समाप्त होने के पहले हम अपने आप को इतना पावरफुल बना ले कि हम अपना तो भला कर ही रहे हैं, लेकिन बाबा ने हमें अब तक रखा है और अंत तक रखेगा, इसलिए कि हमें विश्व का भी कल्याण करना है। और विश्व का कल्याण कौन सी आत्माएं कर पाएंगी? जो अव्यक्त स्थिति में ज्यादा से ज्यादा स्थित रहती है, जिसको अशरीरी स्थिति, अशरीरी अवस्था भी कहते हैं, जिसे बाबा कहते हैं कि लूज हो, कपड़ा लूज हो, एक सेकंड में संकल्प आया परम धाम और आत्मा परम धाम में पहुंच गए, इतना
शरीर से निर्मोही, कपड़ा क्या है, ये शरीर है, यही तो ज्यादा खींचता है। इसमें मोह ना हो, लोगों की चीज में, दुनिया की चीज वस्तु में ना हो, और झट से आत्मा इस शरीर से निकल जाए। इसका बार 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 हम क्या अनुभव कर रहे हैं, जिसको बाबा कह रहे बहुत काल का अभ्यास चाहिए, कपड़े टाइट नहीं चाहिए, और जितना जितना ये बहुत काल का अभ्यास होगा, अंत काल में हमें विश्व की सेवा करने का निमित्त बनाएगा। अंत में बाबा ने बता दिया, हम सब बच्चों ने सुना है कि प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, तूफान आएंगे, प्रकृति के प्रकोप होंगे, और ऐसे समय में हम आत्माओं का रहना उन आत्माओं को मुक्ति देने का निमित्त बनाएगा। लेकिन कौन आत्माएं वो सेवा कर पाएंगी? हमने सुना फलाने जगह भूकंप आया, हमने टीवी ऑन किया, हमने रेडियो ऑन किया, और अरे हमारे तो वो रिश्तेदार भी वहां रहते हैं, अरे वहां के बारे में समाचार मिले नहीं, वो रिश्तेदार जो भी है सबको जाना है, उनको भी और हमको भी जाना है। हम ये सोचे कि हम तुरंत सूक्ष्म रूप ये कपड़े को छोड़ के जो सूक्ष्म शरीर हमारा संकल्प वाला है उससे वहां पे पहुंचे, वहां देखेंगे बहुत सारी लाखों आत्माएं दबी हुई हैं, बिल्डिंग के नीचे दबी हुई। आज जो बाबा ने कहा धर्मराजपुरी कोई और नहीं है, धर्मराजपुरी क्या है वरदान में? आज बाबा का वरदान क्या था? अंत में जो होगा भोगना भोगेंगे, एक एक पल हाथ कटा पड़ा है, सिर फटा पड़ा है, पानी के लिए कोई पानी देने वाला नहीं है, कोई अनाज देने वाला नहीं, कोई दवा देने वाला नहीं है, उन आत्माओं को उस समय क्या चाहिए? उन आत्माओं की शरीर से आत्मा निकल जाए, इससे बड़ा और कोई पुण्य का काम नहीं होगा। और अगर हमारी स्थिति वो अव्यक्त स्थिति बनी होगी, हम झट से वहां पे पहुंच जाएंगे, सभी आत्माओं को दृष्टि दिए बाबा हमारे साथ है, और बाबा को बोले बाबा ये सब आत्माएं बहुत कष्ट सह रही, मेरे अपने भाई बहन है, इन्हें मुक्ति दे दो। सबको एक दृष्टि घुमाई, उनकी आत्मा निकल गई, वो सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि जब तक शरीर में आत्मा है, कष्ट सह रही है, उनको वो एक एक सेकंड कई कई साल के बरोबर सजा भुगतने का अनुभव हो रहा है। क्या हमने ऐसी स्थिति बनाई है? क्या ऐसी हमने अपनी तैयारी की है? अगर विश्व की सेवा अभी उन आत्माओं को मुक्ति नहीं देंगे तो भविष्य में जाके राज्य किस पे करेंगे? प्रजा कौन आपकी बनेगी? प्रजा बनाने के लिए हमने अपनी स्थिति को वैसी बनाई है, और उसके लिए बार बार अपने दर्पण में देखते रहें, क्या मेरे में वो रॉयल्टी आ गई है, वो राजाओं वाले गुण आ गए हैं। ये अभी के राजा नहीं, भविष्य के राजा। भविष्य के राजा कैसे होंगे? राजा सभी प्रजा को अपने बच्चे के रूप में मानते हैं। हम भले ही सभी आत्माओं को अपने बच्चे न माने, लेकिन अपने भाई बहन तो मान सकते हैं। सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। अगर उन्हें ज्ञान नहीं सुना सके, कम से कम मुक्ति तो दिला सकते हैं, क्योंकि उस समय आपका हमारा संकल्प करना ही बाबा इन आत्माओं को मुक्ति दे दो, वो भी आपके भाग्य को बनाएगा। वो आत्माएं सत्युग त्रेता में नहीं आएंगी, क्योंकि उन्होंने ज्ञान नहीं सुना, लेकिन वही आत्मा द्वापर और कलयुग में आएंगी, हमें देखेंगी, अरे इन्होंने तो हमें मुक्ति दिलाई थी, हम तड़प रहे थे, इन्होंने दृष्टि दी थी, हमारी आत्मा निकल गई थी, यही तो मेरे इष्ट देवता है, ये तो मेरी इष्ट देवी है, वो हमारे भक्त बन जाएंगे। कहने का तात्पर्य, अभी हम अपनी प्रजा, अभी हम अपने भक्त, अभी हम अपनी रॉयल फैमिली बना रहे हैं, लेकिन वो सब बनाने के पहले हम अपने आप को चेक करें, हम में वो रॉयल्टी आ गई है। जैसे हमने कहा, ये दुनिया के लोग, हम कहीं जाते हैं ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में, अलग से पूछते हैं बैज लगी हो, व्हाइट कपड़े, आप ब्रह्मा कुमारी से है ना, पूछते हैं ना, बोलते हैं ना, ज्यादातर लोग जानने लगे हैं। इसका मतलब क्या? वो आपको अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। ये लोग सच्चे लोग हैं, ये भगवान का ज्ञान सुनने वाले हैं, तो वो लोग भी तो आपको चेक कर रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं आप ब्रह्मा कुमारी वाले हो, आप ओम शांति वाले हो, तो वो भी तो दर्पण है ना, वो आपको देख के बता रहे हैं। उस समय मेरा बिहेवियर कैसे है दुनिया में उनके सामने, कि उन आत्माओं को लगे कि सही में जो हम सुनते हैं कि इनको भगवान पढ़ाते, इनके बातों से इनके कर्म से ऐसा लग रहा है कि इनको भगवान ही पढ़ाते होंगे। ये दुनिया भी शीश महल है, हमारा घर भी शीश महल है, हमारा सेंटर भी शीश महल है, हमारा मधुबन भी शीश महल है।
तो आशय है आप सब लोग यहाँ से फुल चार्ज होकर जाएंगे, इंचार्ज बनकर जाएंगे, सेंटर के इंचार्ज नहीं, घर के इंचार्ज नहीं, वो तो बहुत छोटी बात है। कहाँ के इंचार्ज? भविष्य, भविष्य सत्युगी दुनिया के इंचार्ज बन के जाएंगे। हम कहते हैं यहाँ पे कोई पोस्ट मिली कोई चीज के इंचार्ज है, वो तो इंचार्ज हो, लेकिन बैटरी को चार्ज किया है? बैटरी को चार्ज नहीं किया और इंचार्ज बने, वो इंचार्ज नहीं है। चार्ज यानी वो स्थिति आपकी इतनी पक्की हो। तो आशा है कि आप सभी इस पावन भूमि से फुल चार्ज होकर जाएंगे और भविष्य सत्युगी दुनिया में हम सभी वही विश्व महाराजन विश्व महारानी जो आज बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाहों की सभा बाबा देख रहे हैं, सभी राजा महाराजा बैठे हैं, तो उसके इंचार्ज बनकर और शीश महल में अपनी चेकिंग करके जाएंगे। हम भी यही पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप सब भी करेंगे, और हर रोज अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अपने मन मंदिर में भी टटोलेंगे कहाँ कौन सी कमी रह गई है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।